الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أولي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم النكاح بركة ليس له مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں مردوں سے فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو دو دو سے تین تین سے چار چار سے نکاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان عظم النکاح برکت لیسرہ مؤونہ, سب سے زیادہ برکت والا خیر والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو اور سادگی ہو. برکت جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے, جیسے کہ شہد میں مٹھاس ہے نظر نہیں آتا, جب تک آدمی کھائے گا نہیں تب تک مٹھاس سمجھ میں نہیں آتا. اللہ پاک نے نکاح میں برکتیں عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مردوں کو بعض دفعہ عورتوں کے ذریعے بعض دفعہ اولادوں کے ذریعے روزی دیتے. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگی ہیں, دعا کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو. آپ نے شادی شدہ آپ دوسری سے کرو. دوسری سے بھی پھر آئے گا یہی معاملہ ہے. کہا تیسری سے کرو پھر یہی معاملہ. چوتھی سے تو کہا اللہ کے نبی چار ہوتی تھی اب تو چار تقسیم ہو گئے. تو چوتھی آنے والی جو تھی وہ ایک ہنر جانتی تھی, صنعت گری جانتی تھی, بننا جانتی تھی, لحاف کپڑے وغیرہ. اب وہ آئی, اس نے کام شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے روزی کے دروازے کھول دیے. اس واقعے سے علماء نے لکھا ہے اپنی لڑکیوں کو شریف پردے میں رہتے ہوئے حدود شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے سلائی مشین ہے کہ ان کے گزر بسر کا کوئی فن ہے یہ سکھا دینے کی اجازت علماء نے اس واقعے سے نکالی, لیکن شرط یہ شریف حدود میں رہے تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ کوئی فن سیکھ لے. جیسے صحابی عورت نے سیکھا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے روزی کا دروازہ کھول دیا. مردوں کے لیے عورتوں کی وہ روزے حرام ہیں جو بدکاری کے ذریعے آئے, حلال ذریعے سے کمائے کوئی ریوس نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی عورت نے کمایا, بہت سارے بیمار ہیں لاگول ہیں, تو عورت نے کوئی کام کر لیا, دودھ بیچ کر گزارا کیا یا کپڑے بیچ کر, تو اس کی کمائی کوئی ریوس نہیں ہے. اس کا شوہر کمزور ہے یا آمد اتنی کم ہے کہ گزر بسر نہیں ہوتا, تو ان کی گنجائش علماء نے نکالی ہے. بہرحال یہ جو نکاح ہیں یہ ضروریات زندگی کے لیے ہیں اور معاشرت کی بنیاد منگنی اور نکاح پر ہوتی ہے. جتنی سادگی کے ساتھ منگنی ہوگی نکاح ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی ہی خیر برکت اور بھلائی ان دونوں میں اور اولادوں میں ڈالتے ہیں. جیسے مرد کا کمال ہے عورتوں کا بھی کمال ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. مرد سے کہا نکاح کے لیے ایسے عورت کا منتخب کرے جس میں یہ صفات ہو. 1,24,000 نبی آئے, ان کو کس نے پروان چڑھایا؟ ماں کی گود نے چڑھایا. ماں میں اگر تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, امت کا درد و غم ہے, تو ان کی گود میں بچے یہی پروان چڑھتے ہیں. اور ماں کی ذہنیت اچھی نہیں تو اولاد بھی ایسی ہی پیدا ہوگی. یہ تو سب کا تجربہ ہوتا ہے. کیونکہ باپ کے مقابلے میں اولاد ماں کے پاس زیادہ رہتی ہے. ابن عثیر نے لکھا کہ ماں کا دودھ بھی وہ پیتا ہے. اور ماں کی توجہ سب سے زیادہ اولاد پر رہتی ہے. ماں کا رحم و کرم, شفقت, در گزر کرنا باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے, اس لیے زیادہ اثر ماں کا اولاد پر ہوتا ہے. किया हो। इसलिए ये चीज औरतों में अगर है तो खुद ब खुद औलादों में मुंतकिल होगी। अंबिया के वालिदैन में ये थी, खास तौर पर इनके अम्मा में, तो अल्लाह पाक ने इनके जरिए ऐसी यानी शख्सियतें दुनिया में वजूद दी। इनलिए लोग कहाँ से पैदा होते, इन्हीं माँ की गोद से पैदा होते। इसलिए हजरत ये फरमाते थे कि अगर माँ बन गई तो पूरा खानदान कबीला बन जाता है, मुल्कों के मुल्क उठाने का जरिया बनते हैं। इसलिए अपने घरों में इन चीज़ों को जिंदा करना, जहन बनाना, ये तो एक ज़रूरत के लिए है। हदीस में फरमाया कि निकाह का ऐलान करो यानी दावत दो। अब बहुत सारे लोग ये जैसे हम बोलते हैं कंकुतिया सपा है, 15-15 रुपये की, 20 रुपये की, 10 रुपये की, उसमें अल्लाह का नाम लिखते हैं, शाह आम पर डाल देते हैं, कोई गाड़ी वाला, कोई चलने वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला, इसके पाँव डाल। अभी गुनाह का काम हो रहा है, अल्लाह का नाम नालियों में बहता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह के नाम में तो वो ताकत और ताकीर है। एक जवान का इंतकाल हुआ, उसकी औरत उम्मीद में थी, जवान गुनहगार था, आजादी कब्र में गिरफ्तार हुआ, और 5 साल का वो लड़का पैदा हुआ, उसकी औरत को मदरसे में गया और अल्लाह का नाम लिया, तो अल्लाह की गैरत को जोश आया, फरिश्तों से कहा कि इस बच्चे ने मेरा नाम लिया है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इसके बाप को मैं अजाब दूँ। अजाब अल्लाह दूर कर देते। दूसरा इसराफ से मना किया, तबजील से मना किया। माल अल्लाह ने हमें दिया, इसका मतलब नहीं जैसे चाहे जब चाहे करे। ये माल जान दीन पर, दावत पर, नेक लोगों पर, उलमा सुलहा पर लग गई तो हमारे खुश नसीबी है। ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून, कि तुम्हारा माल जान उस वक्त बेहतर है जब इन चीज़ों पर लगेगा। मोबाइल के जरिए दावत दे दे, चलकर दावत दे दे, एक मुसलमान की ज़ियारत हो जाए, मुँह ज़ुबानी दावत दे दे, इतना पैसा बच जाएगा, लड़के लड़की को काम देगा। ये है सर, लगाने वाले तो बहुत सारे। फॉरेन का एक वाक्य लिखा, एक आदमी ने लड़की की शादी की, 4 दिन पहले खिलाया पिलाया और $50,000 खर्च किए, गुंजाइश नहीं थी तो बैंक से कर्ज लाया। कुदरती मामले होते हैं, 2 महीने में तलाक हो गई, लड़की घर आ गई, बाप को ये सदमा, और कर्जा भरते भरते 12 साल हो गए। लड़की को देखता आंसू बहाता है, बाहर जाता है, जिल्लत लोग कर्जा मांगते, एक खाना खिलाते नालियों में बहा दिया जाता, अच्छा अच्छा पकवान ज्यादा डालकर रास्तों में डाल दिया जाता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है, आज भी कितनी मुस्लिम कंट्रियाँ ऐसी हैं वहाँ खाना मैसर नहीं। ये बेरोन जो जमातों में जाते आप कारगुजारी सुने तो रोंगटे खड़े हो जाए। आज लोग भूखे मर रहे, पर हमारे यहाँ खुशियों में गमियों में खाना बहता हुआ नजर आ रहा। अभी मुल्क शाम के आज का वाक्य बता रहा हूँ, 5 दिन हो गए खाने का एक लुकमा इनके पेटों में नहीं गया। जो मुल्क शाम जहाँ से दावत चली, अंबिया ने पैगाम रिसालत और अल्लाह की वहदानियत का सबक सिखाया था, आज उस सरजमीन का ही हाल है। हजारों नहीं लाखों लोग खत्म हो गए, शहीद हो गए, पर हजारों लोग लाखों तुर्की में हिजरत करके चले, अपने मकान में, अपने मुल्क में, अपने सांस लेने के लिए इत्मीनान और सुकून नहीं। इसके पीछे बहुत सारे वजूहात होते हैं, ये गुनहगार थे, हमारे लिए इबरत है कि अल्लाह न करे हम पर ऐसा हाल आ गया तो हम क्या, ये सब गुनहगार नहीं होते, लेकिन एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने मार दिया, जान दिया तो सही जगह लगा, कहने के चलो खाना बनाया और अच्छा अच्छा बहा दिया, नहीं गरीबों को दे दे बच गए, यतीमों को दे दे, जरूरतमंदों तक पहुंचा दे, हिसाब से बनाए। और उलमा ने लिखा है कि आपने मेहमानों को बुलाए, इनके खाने पीने का बैठने का इंतजाम किया, इनके वजू नमाज का भी इंतजाम, ये नहीं कि एक सुन्नत के लिए हजारों की नमाज कजा हो जाए, एक सुन्नत के लिए हजारों में बेपर्दगी हो जाए, एक सुन्नत के लिए हजारों में हराम हो जाए, एक सुन्नत के लिए हजारों की तस्वीरें ली जाए दी जाए तो हराम है। फरमाए रहमत का फरिश्ता और खुशी के मौलवे में उस घर में उस बाग और खेत में नहीं आता जहां बगैर जरूरत की तस्वीर खींची जाए। हाँ, ये तो पैसे इसलिए रखते इस पर भी तस्वीर, लेकिन ये जरूरत के लिए। पासपोर्ट का फोटो इसलिए लेते कि जरूरत के लिए, इसकी तो गुंजाइश है। अब तो जगह जगह के अमीरे लगे, अल्लाह हिफाजत करवाए कि दोस्तों ये सोचने की चीज है कि अभी सुन्नत जिंदा करवाए न जाने कितनी चीजें हो। यहाँ तौर पर ऐसा हो गया, हमारे यहाँ तो अल्लाह का फजल है वरना बड़े गैर बनाते हैं और घुसते ही के अमीरे। अब तुमने अच्छों को भी दावत दी, अवाम को भी दी, खवास को भी दी, वो आए और हराम में जा। अब दावत दे ना आए तो भी बुरा, अब आए तो एक गुनाह में लगते हैं। इसलिए दोस्तों बुजुर्गो, हम दावत देते हैं तो फिर ऐसा इंतजाम भी करना चाहिए ताकि आने वाला गुनहगार बन के न जाए, सारों का गुनाह हमारे सर पर ना आ जाए। अल्लाह ने माल दिया, यही माल अपने औलाद को कोई सोना है, चांदी है, करोड़ है, मकान देगा, मुस्तकबिल में काम लगेगा। और इनका एक वाक्य मुफ्ती महमूद साहब ने बयान किया, एक लड़की में बाप ने $1,00,000 खर्च किए, दूसरी लड़की होशियार थी, खिलाया पिलाया खत्म हो गया, किसी ने नुक्स निकाला नमक कम था, किसी ने कहा कि हलवाई में मिठास ज्यादा था, खा पी के चले गए। आमतौर पर यही हुआ करता है, माँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में ऐब निकालने से अल्लाह के नबी ने मना किया, चलता है खा लो नहीं चलता है तो भेजा। हाँ, कि ऐब जो ही ऐब वही करने वाले तो जानना भी बताए। हाँ, तो बहरहाल दूसरी लड़की होशियार थी, समझदार थी, दीनदार थी, इसने वाले साहब से कहा, फाजान आपने इसमें कितना खर्च किया? कहा $1,00,000। कहा मेरा जी चाहता है आप खर्च ना करें, वो मुझे दे दे, आप खुशी से दे। तो कहा ठीक है क्या करें? कहा इतने पैसे का मुझे एक फलेर दिला देगा। दिला दिया। अब शादी हो के बड़े आराम से रह रही है, अपना मकान हो गया, और वो बिचारी बड़ी लड़की की शादी में इसने जैसे कहा वालिद ने खर्च कर दिया, वो किराए में रह रही, दर बदरी की जिंदगी ले रही। इतनी अकलमंदी की इसने बात सोच कर करी कि मकान दिला दे काम लग जाए, कोई करोड़ दे दे काम लग जाए। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह एक बड़ी सुन्नत हुई कि मस्जिद में निकाह हुआ। बहुत सी जगह आपको लोग हॉल बना के उसमें ले जाते, मर्द भी है औरतें भी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन बीमारियों से, इन खुराफात से अभी तक हम महफूज हैं और दुआ करें अल्लाह हमेशा के लिए महफूज फरमाए। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको बता दे मेहर मस्जिद में खामोशी से दे दो, माशाल्लाह इन्होंने मेहर भी मस्जिद में दी। तीसरी बात इनसे कही, जो मेहंदी लगाने का रस्म है वो अपना नहीं है, बिरादराने वतन का है। ना मेहरम औरतें आती हैं और बिचारे दुल्हा का जबरदस्ती हाथ पकड़ती है। एक तो ना मेहरम औरतों का देखना और दिखाना ये भी हराम। एक मरतबा एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी के मौज़िन उम्मे मक्तूम अल्लाह के नबी से एक मसला पूछने आए, एक बात पूछने आए, तो आपके पास हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों हमारी माएँ अल्लाह के नबी की औरतें बैठी हुई थी, और जैसे सलाम करके तशरीफ लाए अल्लाह के नबी ने कहा सहाबी आ रहे पर्दा करो। औरतों ने कहा अल्लाह के नबी को नाबीना है कहाँ में देखेंगे? तो कहा उनको नाबीना है क्या तुम भी हंधे हो गए, तुम इनको नहीं देखोगे? हाँ, कि औरतों को भी पर्दा, मर्दों को भी, और कौन है? हमारी माए है। हाँ, इनसे अल्लाह के नबी ने, और सहाबी, सहाबी तो महफूज होते हैं लेकिन एक हमें सबक दिया गया। तेना मेहरम औरतें आती है हाथ पकड़ती है, हाथ नहीं देते तो मुंह पे सर पे डाल के चली जाए, ऐसी शिकायतें करते बिचारे दूल्हे लोग। हाँ, तो इनको समझाए कोई हराम है तो माशाल्लाह दोनों तरफ से मान गए कि ये चीज हमें दाखिल नहीं करनी, निकाल देना। फिर दूसरा मसला ये कि मुंह मांगे रकम देते, अगर 500 देते तो कहा नहीं 1,000 ही दो, जबरदस्ती नहीं ले सकते, मना है।
حضرت تھانوی نے تو لکھا مسجد و مدرسے قرآن و تبلیغ کے لیے بھی کوئی چندہ کرتا ہے تو کہے سو تو سو لو, زبردستی 500 بھی مت لو. ہاں کہ زبردستی مسجد کے لیے اللہ کے لیے لینے سے بھی منع کیا کہ زبردستی کا سودا نہیں ہے. ہاں کہ اس کی جیسے خوشی تین خاطر جتنا بھی لے لو. ہاں اور اس میں زبردستی کر رہے کہ نہیں اتنے ہی لیں, اب بعد ہی لینا.